नमस्कार भारत, तारीख 9 फरवरी दिन बृहस्पतिवार, मैं हूं मोहनलाल शर्मा। शशिकला को तमिलनाडु के मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाने के लिए कितना इंतजार करवाएंगे राज्यपाल? क्या इंतजार आय से अधिक संपत्ति के मामले में अदालत के फैसले का है? पहली बार मतदाता बनी उत्तर प्रदेश के दंगा पीड़ित मुजफ्फरनगर की मुस्लिम युवतियों के लिए क्या मुद्दे हैं इस चुनाव में?
दहेज नहीं दे पाते तो उन्हें मारते हैं, पीटते हैं, फांसी दे देते हैं, उन्हें जला देते हैं।
पुलिस कुछ नहीं कर पाती जी, सुन के बैठ जाती है, अगर रिश्वत देते हैं तो करते हैं वे।
जर्मनी के राष्ट्रपति चुनावों पर सुनिए दुनिया जहान, लेकिन पहले बीबीसी समाचार।
बीबीसी समाचार, दिलनवाज पाशा से। तमिलनाडु के कार्यकारी राज्यपाल विद्यासागर राव के चेन्नई में ना होने की वजह से एआईडीएमके पार्टी की नेता चुनी गई शशिकला अब तक मुख्यमंत्री पद की शपथ नहीं ले सकी हैं। उनके शपथ लेने में हो रही देरी के कारणों पर अब सवाल उठने लगे हैं। शशिकला को 5 फरवरी को ही नेता चुन लिया गया था, लेकिन राज्यपाल ने अभी तक उन्हें शपथ नहीं दिलाई है। अमेरिका के सदन ने अटॉर्नी जनरल पद के लिए राष्ट्रपति ट्रंप की पसंद अलबामा के विवादित सीनेटर जेफ सेशंस पर मोहर लगा दी है। उनकी नियुक्ति के पक्ष में 52 और विरोध में 47 सीनेटर रहे। नागरिक अधिकारों को लेकर उनके विवादित रिकॉर्ड पर कई दौर की सुनवाई के बाद ये अनुमोदन हुआ है। ब्रिटेन की संसद के निचले सदन ने यूरोपीय संघ से अलग होने की प्रक्रिया को शुरू करने के सरकार को अनुमति देने के विधेयक को 2/3 बहुमत से पारित कर दिया है। प्रधानमंत्री टेरेसा मे का कहना है कि वो इस साल मार्च के अंत में यूरोपीय संघ से अलग होने की औपचारिक वार्ता शुरू कर सकती हैं। इस कानून में कई अतिरिक्त शर्तें जोड़ने के प्रयास भी किए गए। इनमें ब्रिटेन में रह रहे यूरोपीय नागरिकों को अलग होने के बाद यहां रहने का अधिकार देने का प्रस्ताव भी शामिल था। अब इस विधेयक को उच्च सदन में पेश किया जाएगा। लेबर पार्टी के सांसद और शैडो व्यापार मंत्री बैरी गार्डनर का कहना है कि लोकतंत्र जीत गया है, लेकिन यूरोप के बाद ब्रिटेन की हालत खराब होगी। उन्होंने कहा, मुझे लगता है कि देश जिस रास्ते पर चल पड़ा है उससे हम गरीब हो जाएंगे और हम में विभाजन बढ़ जाएगा और हम आखिर में एक दूसरे के प्रति कम दयालु हो जाएंगे। मुझे सिर्फ इस बात का संतोष है कि आज रात हमने सांसदों के तौर पर लोकतंत्र को सर्वोपरि रखा है और ये मेरे लिए और मेरी पार्टी के लिए अहम है। अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट में खाली जगह भरने के लिए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से नामित जज ने ट्रंप के न्यायालय पर निशाना साधने को बेहद निराशाजनक और हतोत्साहित करने वाला बताया है। डेमोक्रेट सीनेटर रिचर्ड ब्लूमेंथल का कहना है कि नील गॉर्सच ने उनसे कहा था कि उन्होंने ट्रंप के एक संघीय जज को तथाकथित जज कहने को अपवाद के तौर पर लिया था। सिएटल के एक जज ने राष्ट्रपति ट्रंप के साथ मुस्लिम बहुल देशों से आने वाले लोगों पर रोक लगाने वाले आदेश पर रोक लगा दी है। अब इस फैसले के खिलाफ दायर हुई अपील पर सुनवाई होनी है और राष्ट्रपति ट्रंप ने जज की आलोचना को जारी रखा है। उन्होंने पुलिस प्रमुखों की बैठक में कहा है कि वो ये तो नहीं कहेंगे कि जज निष्पक्ष नहीं है, लेकिन कुछ फैसले राजनीति से प्रेरित हैं। ट्रंप ने कहा, मैं कभी भी अदालत को पक्षपाती नहीं कहना चाहूंगा, तो मैं इसे पक्षपाती नहीं कहूंगा। अभी तक फैसला नहीं आया है, लेकिन अदालतें राजनीतिक प्रतीत हो रही हैं और यह हमारी न्याय व्यवस्था के लिए बहुत अच्छा होगा अगर वो सही फैसले लें। अमेरिका के रक्षा विभाग पेंटागन ने इसी महीने सीरिया में किए गए एक हवाई हमले में वरिष्ठ अलकायदा सदस्य अबू हानी अल मसरी की मौत की पुष्टि की है। पेंटागन का कहना है कि मसरी ओसामा बिन लादेन और उनके बाद अलकायदा प्रमुख बने ऐमान अल जवाहिरी के करीबी थे। मसरी ने 80 और 90 के दशक में पाकिस्तान और अफगानिस्तान में अलकायदा के ट्रेनिंग कैंप भी स्थापित किए थे। अमेरिका के एक और हवाई हमले में अलकायदा से जुड़े 10 लोगों की मौत हुई है। बोलीविया ने टिड्डियों के कारण फसलों को हो रही बर्बादी के बाद देश के एक बड़े इलाके में आपातकाल लगा दिया है। बीबीसी समाचार।
बीबीसी हिंदी सेवा की पहली सभा नमस्कार भारत में आपका स्वागत, अभिनंदन और मेरा नाम है मोहनलाल शर्मा। तमिलनाडु में अभी भी राजनीतिक अस्थिरता बनी हुई है। जयललिता की करीबी शशिकला को विधायक दल का नेता चुना जा चुका है। पनीर सेल्वम पद से इस्तीफा दे चुके हैं और राज्यपाल विद्यासागर राव चेन्नई नहीं पहुंच रहे। कल शशिकला ने AIADMK के 134 विधायकों में से 130 के समर्थन का प्रमाण भी दे दिया। उधर कार्यवाहक मुख्यमंत्री ओ पनीरसेल्वम ने जयललिता के निधन के जांच के आदेश जारी कर दिए। दो दिन पहले पनीरसेल्वम ने यह कहकर सबको चौंका दिया था कि उनसे मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दबाव डालकर दिलवाया गया था। राजनीतिक अस्थिरता के इस माहौल में अब सबकी नजरें राज्यपाल की भूमिका पर हैं कि वो चेन्नई लौटने के बाद शशिकला को मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलवाते हैं या फिर आय से अधिक संपत्ति के मामले में अदालत के फैसले का इंतजार करते हैं और इसे टालते रहते हैं। सुनिए बेंगलुरु से इमरान कुरैशी की रिपोर्ट।
सामान्य तौर से जब कभी एक विधायक दल नया नेता चुनता है तो नेता के लिए फौरन शपथ लेने का इंतजाम किया जाता है, लेकिन तमिलनाडु के राज्यपाल विद्यासागर राव इस मामले में देरी कर चलते राजनीतिक दलों के निशाने पर आ गए हैं। राज्यपाल न सिर्फ कांग्रेस पार्टी के बल्कि बीजेपी के सांसद और वकील सुब्रमण्यम स्वामी के निशाने पर भी हैं। जिस दिन पन्नीरसेल्वम ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया, अन्ना डीएमके के विधायक दल ने वीके शशिकला को नेता भी चुन लिया। उस दिन राज्यपाल राव तमिलनाडु के कोयम्बतूर में ही थे। वो कोयम्बतूर से ही दिल्ली रवाना हुए और वहां से मुंबई के राजभवन चले गए, जहां से वो महाराष्ट्र के राज्यपाल का काम भी देखते हैं। आपको बता दें कि राव न सिर्फ महाराष्ट्र के बल्कि तमिलनाडु के कार्यकारी राज्यपाल हैं। अभी तक सिर्फ कांग्रेस के नेता ही राज्यपाल पर इल्जाम लगा रहे थे कि वो केंद्र की बीजेपी सरकार के इशारों पर पन्नीरसेल्वम को मदद कर रहे हैं, लेकिन तीन दिन के बाद राज्यपाल राव के चेन्नई में मौजूद ना होने पर कानून के जानकार भी सवाल उठा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के एक वरिष्ठ वकील का मानना है कि और देरी करने पर मामला कहीं अदालत में ना चला जाए। सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील संजय हेगड़े ने बताया,
नॉर्मली गवर्नर इज एक्सपेक्टेड टू डू द नेसेसरी स्वेयरिंग इन सेरेमनी विद इन अ डे और टू, समटाइम्स पीपल हु आर गोइंग टू बी।
परंपरा ये है कि जब एक विधायक दल का नेता चुना जाता है तब सामान्य तौर से राज्यपाल एक या दो दिन में शपथ दिला देते हैं। मामला अभी हद से बाहर जा रहा है और हमें लगता है कि अगर फौरन शपथ नहीं दिलाई गई तो मामला कोर्ट में भी पहुंच सकता है, क्योंकि अभी ऐसा लग रहा है कि इसमें जानबूझकर देरी की जा रही है। ये थे संजय हेगड़े के शब्द। संजय हेगड़े का मानना है कि ये देरी का वजह सुप्रीम कोर्ट का निर्णय शशिकला के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति मामले पर निर्भर नहीं हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट का निर्णय कभी भी आ सकता है, सिर्फ एक दो हफ्ते में भी आ सकता है और फैसला भी कुछ भी हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट के एक और वरिष्ठ वकील राजू रामचंद्रन ने कहा,
बिकॉज ऑफ द पॉसिबिलिटी दैट एन एक्विटल माइट बी ओवरटर्न्ड, दैट कांट बी अ ग्राउंड फॉर नॉट स्वेयरिंग इन एन इलेक्टेड लीडर।
हम उस राय से नहीं मानते हैं कि राज्यपाल आय से अधिक संपत्ति के मामले में सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आने तक इंतजार करना चाहिए। कोर्ट का निर्णय कुछ भी हो सकता है, लेकिन कोई संभावना के कारण किसी को ये अधिकार नहीं मिलता है कि एक लोकतांत्रिक निर्णय पलटा जा सके। हम यहाँ संवैधानिक रूप से सही निर्णय की बात कर रहे हैं। हालांकि हम भी मानते हैं कि राजनीति में पन्नीरसेल्वम को शशिकला से ज्यादा अनुभव है। ये थे राजू रामचंद्रन के शब्द। संजय हेगड़े और राजू रामचंद्रन एक ही विचार के हैं कि अगर आय से अधिक संपत्ति के मामले में सुप्रीम कोर्ट शशिकला को दोषी ठहराती है तो वो मुख्यमंत्री के पद पर नहीं रह सकती हैं, और ऐसे मामलों में सुप्रीम कोर्ट पर भी दबाव नहीं डाल सकते हैं, जैसे कि जल्लीकट्टू के मामले में जब याचिकाकर्ताओं ने जल्दी निर्णय मांगा तो कोर्ट ने साफ इनकार कर दिया। वजह यह थी कि कोर्ट अपनी निष्पक्षता रखना चाहती है और राजनीतिक विषयों में दखल नहीं करना चाहती है। अभी ये देखना होगा कि राज्यपाल अगर आज चेन्नई पहुंचे तो कितना समय लेंगे शशिकला को शपथ दिलाने के लिए, क्योंकि उन्होंने साबित कर दिया है कि 134 सदस्यों के विधायक दल के 130 विधायक उनके साथ हैं। बेंगलुरु से इमरान कुरैशी।
तो अब सबकी नजरें राज्यपाल विद्यासागर राव पे लगी हुई है कि वो कितने दिन तक मुख्यमंत्री का पद ग्रहण टालते हैं। रुख उत्तर प्रदेश का करते हैं, जहां विधानसभा चुनावों के पहले चरण का मतदान 11 फरवरी यानी कि शनिवार को होना है। राज्य के 15 जिलों में 73 सीटों के लिए पहले चरण का चुनाव प्रचार आज शाम थम जाएगा। 11 तारीख के मतदान में दंगा प्रभावित रही मुजफ्फरनगर और शामली जिले की सीटें भी शामिल हैं। मुजफ्फरनगर में पहली बार वोट डालने वाले मतदाताओं में कई मुसलमान युवतियां हैं, जो दंगों में विस्थापित होने के बाद नई बस्तियों में रह रही हैं। बीबीसी संवाददाता दिव्या आर्य ने पलड़ा गांव में ऐसी ही एक बस्ती में इन युवतियों से पूछा कि वो अपने भावी नेता और सरकार से क्या मांग रखना चाहेंगी।
नमस्ते,
नमस्ते।
मेरे साथ 8 युवा लड़कियां हैं, करीबन 18-19 साल की, और हम लोग हैं मुजफ्फरनगर के पलड़ा गांव में, जहां पर ये नई बस्ती बसी है। ये सब दंगा विस्थापित हैं, 2-3 साल पहले ही इन्होंने यहां पर आके अपनी रिहाइश बसाई है, और अब ये पहली बार चुनाव में वोट डालने वाली हैं। इनमें से कुछ के कार्ड बने हैं, कुछ के नहीं बने हैं, लेकिन सबके पास बहुत सारी बातें हैं अपने नेताओं को कहने के लिए। तो सबसे ज्यादा जो बात बार बार सबने कही वो थी
शिक्षा। हमारे यहाँ पे सरकारी स्कूल खुलना चाहिए, जो 8वीं से आगे दीदी, यहाँ पे कोई 8वीं से आगे स्कूल नहीं है, इसलिए कि 8वीं से आगे तो कोई बच्चों को पढ़ाता नहीं है।
8वीं से आगे कोई लड़कियों को नहीं पढ़ाते
जी?
और 8वीं के बाद जो स्कूल है वहाँ पे मुफ्त शिक्षा नहीं है, 8वीं तक है?
हाँ जी, 8वीं तक ही है, यहाँ पे खुल जाए 8वीं से 12वीं तक का, मतलब खुल जाए दीदी।
तो यहाँ क्या लड़कियों को काम करने देते हैं?
जी यहाँ काम तो करने देते हैं, मगर जी कुछ काम नहीं था जी, हम चाहते हैं यहाँ सिलाई का भी काम आवे, सारे सिलाई बुनाई कढ़ाई और कंप्यूटर द्वारा भी जी काम होते हैं, हम चाहते हैं कि यहाँ सारे काम आ जाए।
और आप क्या कहना चाहती हो?
आंगनवाड़ी के बारे में कहना चाहे जी, जो आंगनवाड़ी खुल जाए यहाँ पे।
यहाँ पे आंगनवाड़ी है कोई अभी?
जी नहीं, अभी नहीं है।
और आंगनवाड़ी क्या करती है?
आंगनवाड़ी जी जैसे टीकाकरण हो गया, बच्चों को पढ़ाना, और सत्तू मिलता है बच्चों को, छोटे छोटे सबको, आज डिलीवरी होती है, ये सापुर अस्पताल है सरकारी, वहाँ पे ले जावे आशा, इसके बारे में।
तो अभी ये सब नहीं है यहाँ?
जी नहीं।
कहाँ तक पढ़ी हो?
इंटर,
मतलब 12वीं तक पूरी पढ़ाई की है। और अब क्या करती हो?
अब तो जी बस चल लिया है, कुछ नहीं करते।
पर चाहती हो कि कुछ करने को मिले, कुछ काम करने को मिले। अच्छा, यहाँ पे जब लड़कियाँ अपनी पढ़ाई पूरी कर लेती हैं तो उसके बाद क्या होता है? उनको रोजगार करने को मिलता है, शादी हो जाती है?
उनके घर का काम करते हैं जी। अच्छा। सफाई वगैरह, खाना वगैरह, अपना झाड़ू वगैरह, फिर शादी हो जाती है।
और लड़कों को क्या मिलता है करने को 12वीं के बाद?
लड़कों को जी पढ़ाई मिलती है, नौकरी मिलती है, बाहर काम करते हैं फिर उसके बाद।
अच्छा ये बताओ, जल्दी शादी होने में क्या नुकसान है?
जी ये नुकसान है, शादी हो जा हल्की उम्र में शादी हो जाती है, फिर वे तंग करते हैं, ये काम नहीं आता, यो नहीं आता, इस पर खाना नहीं बनाना आता, यो नहीं आता, वही कुछ कुछ बता लगा, फिर अपनी शादी टाइम पे होते सब काम आने लगता है।
इस वजह से उनके माँ बाप दहेज नहीं दे पाते, तो उन्हें मारते हैं, पीटते हैं, फांसी दे देते हैं, उन्हें जला देते हैं, तो इस वजह से हल्की उम्र में शादी नहीं करनी चाहिए।
तो इसके खिलाफ कभी कोई बोलता है कि दहेज नहीं देंगे लेंगे?
जी ये तो कहते नहीं कोई, तो जब परेशान करा तो यूँ नहीं कहते, नहीं बार सुनवाई
दहेज भी देता है जी, और फिर जब भी मारा है जी।
अच्छा पुलिस के पास कंप्लेंट करने में तुम लोगों में को हिम्मत महसूस होती है? तुम्हें लगता है पुलिस तुम्हारी सुनती है?
जी पुलिस कुछ नहीं कर पाती जी, सुन के बैठ जाती है, अगर रिश्वत देते हैं तो करते हैं वे, वरना कुछ नहीं करती।
यानी यहाँ पर शिक्षा, रोजगार, सुरक्षा, पुलिस के रवैये और काम को लेकर बहुत सारी बातें इन सब औरतों ने रखी हैं, और ये सब आपने अपना वोट देते समय इन सभी बातों को सोचेंगी, इसलिए जो सारे नेता आज बीबीसी हिंदी का कार्यक्रम सुन रहे हैं वो भी इन सब बातों को सुनें और अपने मतदाताओं को बताएं कि कब वो उनकी ये सारी मांगें पूरी करेंगे। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।
हमारी सहयोगी दिव्या आर्य बात कर रही थी उन मुस्लिम युवतियों से जो कि पहली बार इस चुनाव में अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने वाली हैं। मुजफ्फरनगर से आपको ले चलते हैं मुरादाबाद। मुरादाबाद के पीतल कारोबारियों पर 8 नवंबर के सरकार के नोटबंदी के फैसले की तगड़ी मार पड़ी है, क्योंकि इनका ज्यादातर कारोबार नगद में ही होता है। ऐसे में पीतल उद्योग से जुड़े ज्यादातर मुस्लिम कारोबारियों के मन में आखिरकार क्या चल रहा है, क्या सोच रहे हैं वो कि इस बार किस पार्टी के पक्ष में अपना मतदान करेंगे, ये जानने की कोशिश की है बीबीसी संवाददाता जुबैर अहमद ने अपनी इस रिपोर्ट में।
पीतल नगरी यानी मुरादाबाद का मकबरा इलाका, यहाँ घर घर से पीतल के सामान बनाने के कारखानों में लगी मशीनों की आवाजें अक्सर सुनाई देती रहती हैं। यहाँ के निवासी अख्तर अली भी एक कारखाने के मालिक हैं। वो कहते हैं कि नोटबंदी के कारण पीतल उद्योग की चमक गायब हो गई है।
नोटबंदी की वजह से हमारे कारोबार पे बहुत ज्यादा असर हुआ है। एक तरह का समझ लो 90% हमारा काम जो है बंद हो गया। जो हमारे पहले काम करते थे कारीगर, तो अब वो 10% काम कर रहे हैं। तो अब जब हम अपने लेबर को पैसे नहीं दे पाए, तो फिर हमने अपने घर के बच्चे बैठा ले। जो हमारे बच्चे स्कूल पढ़ना चाहते थे तो हमें उनको बैठाना पड़ा, मजबूरी थी, क्या करते।
पीतल के 6,000 करोड़ रुपये सालाना वाले इस उद्योग का आधा माल विदेश भेजा जाता है। अख्तर अली का दावा बढ़ा चढ़ा कर बयान देने की एक कोशिश हो सकती है, लेकिन इस हकीकत से मुंह नहीं मोड़ा जा सकता कि पीतल उद्योग के इस गढ़ में नोटबंदी की मार का असर हर कारखाने पर महसूस किया जा सकता है। अख्तर अली कहते हैं उनका सारा कारोबार कैश पर चलता है।
हमारे सिटी के अंदर जो सारा कारोबार जो कैश में चलता, जो गरीब लेबर है यहाँ पर, उनको रोज पैसा चाहिए। अब हमारा पैसा नहीं देने के लिए तो वो लोग काम क्यों करेंगे, वो कुछ और काम करने लगे बेचारे। कोई रक्षा चलाने लगा, कोई कुछ और करने लगा।
मुगलों के दौर में शुरू हुए इस उद्योग के प्रोडक्शन या उत्पाद का काम मुस्लिम कारीगरों पर टिका हुआ है, जो पहले से ही गरीबी और निरक्षरता का शिकार है। अब अख्तर अली का उदाहरण ही ले लीजिए। कहने को वो एक कारखाने के मालिक हैं, लेकिन उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है। उस पर से उनके भाई और बच्चे भी एक ही कारखाने की कमाई पर निर्भर करते हैं। अली संकोच करते हुए बताते हैं कि वो 7 बेटों और 3 बेटियों के बाप हैं। उनके कारोबार में उनके सभी बेटे शामिल हैं। इसे आर्थिक मामलों के माहिर प्रचंड बेरोजगारी कहते हैं। उनके भाई और भाई के बेटे भी उनके कारखाने से जुड़े हुए हैं। नोटबंदी से पीतल उद्योग पर बुरा असर तो पड़ा है, लेकिन क्या इसका असर विधानसभा चुनाव पर भी होगा? अली कहते हैं
जो हमारे नोटबंदी ने हमें परेशान कर दिया, तो फिर हम अपना वोट जो है सोच समझ के देंगे, और हम अपना वोट जो है सही मायने में जो फिरका परस्त ताकते हैं उनके खिलाफ देंगे। तो जाहिर बात है हमारे देश के अपने मुख्यमंत्री जी बिल्कुल सही काम कर रहे हैं, साइकिल को वोट देंगे हम। सोच तो पहले भी थी, लेकिन पहले कुछ कमती बढ़ती थी, अब बिल्कुल क्लियर हो गई।
पीतल नगरी के निवासी कहते हैं कि अगर मुसलमान मतदाताओं का वोट न बटा तो मुरादाबाद की 2 विधानसभा सीटों पर उनका फैसला निर्णायक होगा। हाँ, मुस्लिम वोटों के बंटवारे का डर अख्तर अली और उनके साथियों को परेशान करता जा रहा है। जुबैर अहमद, BBC मुरादाबाद।
चुनाव का मौसम चल रहा है और चुनाव की बहुत सारी खबरें अखबारों में भी छपी हुई हैं। दिलनवाज पाशा मौजूद हैं। दिलनवाज, क्या करें आज भारत के अखबार जो दिल्ली से छपे हुए हैं।
जी, भारत के सभी प्रमुख अखबारों में कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो संसद में भाषण दिया उसमें जो चीज़ें निकल कर आई वो प्रमुखता से छपी हैं। वॉशरूम में रेनकोट पहनकर नहाने की कला मनमोहन से सीखे। प्रधानमंत्री मोदी ने कल पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह पर तंज कसते हुए कहा था कि वो बाथरूम में भी रेनकोट पहनकर नहाते होंगे। तो ये खबर आज लगभग सभी अखबारों के पहले पन्ने पर, और कल सोशल मीडिया पर इस खबर को लेकर काफ़ी आलोचना भी हुई प्रधानमंत्री की। लोगों ने कहा कि जो मर्यादा है प्रधानमंत्री पद की, वो इस बयान में नहीं रखी गई। इसके अलावा एक और खबर जो सभी अखबारों के पहले पन्ने पर है, वो भारत की न्याय व्यवस्था से जुड़ी है। संविधान पीठ ने जस्टिस कर्णन को न्यायिक और प्रशासनिक काम से रोक दिया है। ये पहली बार है कि किसी जज को हाईकोर्ट के अदालत में पेश होने का आदेश दिया है। ये खबर आज के सभी अखबारों के पहले पन्ने पर, और आज हमने अपना कार्यक्रम जिस खबर से शुरू किया था, तमिलनाडु में जो राजनीतिक असमंजस बना हुआ है, वो खबर सभी अखबारों के पहले पन्ने पर है। कुछ अखबार ये लिख रहे हैं कि जयललिता ने पार्टी के 131 विधायकों को होटल पहुंचा दिया है और अब वो ओ पनीर सेल्वम को देखेंगी। अब कैसे देखेंगी ये आगे पता चलेगा।
एक जगह ये भी बयान चल रहा है कि अगर चाहें तो राष्ट्रपति के सामने परेड करवा सकते
हैं। जी बिल्कुल, और ये ऐसा भी संभव हो सकता है। मुसलमान इबादत से मुस्लिम पर राष्ट्रीयता से हिंदू, ये आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत का बयान है। अलग अलग अखबारों में अलग अलग तरह से छपा है, लेकिन सभी अखबारों ने इसे प्रमुखता से छापा है। इसके बाद एक और बड़ी दुखदायी खबर है। दिल्ली में कार में आग लग गई और उसमें सवार व्यक्ति सेंट्रल लॉक हो जाने की वजह से जलकर मर गया। और वो ये एक टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक सचिन नाम के व्यक्ति अपने बच्चों के लिए गाड़ी में तोहफे लेके घर जा रहे थे, तो ये बड़ी दुखद खबर है। इसके अलावा द इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट ध्यान खींच रही है। इतिहास बदला जा रहा है राजस्थान में, और अब यूनिवर्सिटी की किताबों में पढ़ाया जाएगा कि महाराणा प्रताप ने हल्दी घाटी की लड़ाई में अकबर को हरा दिया था, अकबर की सेनाओं को हरा दिया था। अब तक हम जो इतिहास पढ़ के आए हैं उसमें ये है कि उस हल्दी घाटी में जो लड़ाई हुई थी, मानसिंह के नेतृत्व में अकबर की सेनाएं जीती थी। तो ये खबर आज इंडियन एक्सप्रेस में है।
बहुत बहुत शुक्रिया दिलनवाज पाशा आपका।
नमस्कार भारत, शॉर्टवेव 49, 41, 31 और 25 मीटर बैंड यानी 5875, 7430, 9560, 11995 किलोहर्ट्ज और मीडियम वेव 1413 किलोहर्ट्ज पर।
आप सुन रहे हैं बीबीसी हिंदी सेवा की पहली सभा नमस्कार भारत कार्यक्रम में। अब वक्त है दुनिया जहान का। जर्मनी 12 फरवरी को अपना नया राष्ट्रपति चुनने जा रहा है। वर्तमान राष्ट्रपति योआकिम गाउक फरवरी 2012 में देश के राष्ट्रपति चुने गए थे। वो उस वक्त पार्टियों के संयुक्त उम्मीदवार थे। 76 साल के गाउक ने बढ़ती उम्र के चलते फिर से चुनाव न लड़ने का फैसला किया। लेकिन सवाल नए चांसलर का भी है, क्योंकि इस चुनाव के बाद जर्मन संसद के लिए 24 सितंबर को वोट पड़ेंगे और इस चुनाव में असली परीक्षा वर्तमान चांसलर एंगेला मर्केल के भविष्य की है, क्योंकि शरणार्थी संकट समस्या से जूझ रहे इस दौरान जर्मनी में बहुत कुछ बदल चुका है। सुनिए इस बार इसी विषय पर चर्चा। दुनिया जहां
Als ich vor fast fünf Jahren das Amt des Bundespräsidenten übernommen habe, da habe ich mich und meine Landsleute gefragt,
18 जनवरी 2017 को जर्मनी की राजधानी बर्लिन में राष्ट्रपति निवास वेलेव्यू पैलेस से राष्ट्रपति योआकिम गाउक ने आखिरी बार देश को संबोधित किया। उनके भाषण का विषय था हमारा देश कैसा हो। राष्ट्रपति ने इस मौके पर कहा कि सिर्फ एक लचीला लोकतंत्र ही हिंसा और आतंक के खतरे को पराजित कर पाएगा। लेकिन पश्चिमी दुनिया का ये शांत देश अब कुछ कुछ बदल रहा है। लोकतांत्रिक प्रणाली वाले इस देश में चांसलर एंगेला मर्केल की सत्ताधारी कंजर्वेटिव क्रिश्चियन डेमोक्रेट्स CDU और सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी SDP अपने संयुक्त उम्मीदवार विदेश मंत्री फ्रांक वॉल्टर स्टाइनमायर को राष्ट्रपति चुनने के लिए तैयार है। वोट प्रतिशत के लिहाज से उनकी जीत पक्की मानी जा रही है। तो इस राष्ट्रपति चुनाव में कौन कौन उम्मीदवार हैं, जर्मनी के बॉन में काम कर रहे पत्रकार विवेक कुमार बताते हैं।
एक SPD पार्टी के फ्रैंक वॉल्टर स्टाइनमायर हैं, फिर डीलिंके एक पार्टी है उनके क्रिस्टोफ बुटरवेग हैं, और जो राइट विंग AFD पार्टी है अल्ब्रेक्ट ग्लाजर, जो CSU है CDU जो सबसे बड़ी पार्टी है उसके पास क्योंकि 540 कुल सांसद हैं तो उसके पास 42% वोट है। फिर सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी जो है जो कि CSU की सहभागी है केंद्र सरकार में इस वक्त, और उन दोनों ने मिलकर ही स्टाइनमायर को नॉमिनेट किया है। तो कुल मिलाकर स्टाइनमायर के पक्ष में लगभग 70% वोट बनते हैं, लिहाजा ये माना जा रहा है कि स्टाइनमायर राष्ट्रपति बन जाने वाले हैं।
लेकिन जर्मनी के लिए सवाल मात्र नए राष्ट्रपति का नहीं है, सवाल नए चांसलर का भी है, क्योंकि राष्ट्रपति चुनाव के बाद जर्मनी में संसद के लिए 24 सितंबर को वोट पड़ेंगे और इस चुनाव में असली परीक्षा वर्तमान चांसलर एंगेला मर्केल के भविष्य को लेकर है। 62 साल की मर्केल पहली बार 2005 में जर्मनी की चांसलर बनी थी। चौथी बार वो इस पद की दौड़ में है और इस दौरान जर्मनी में बहुत कुछ बदल चुका है। जर्मनी शरणार्थी संकट समस्या से जूझ रहा है। अफगानिस्तान, सीरिया और इराक से लाखों प्रवासी व शरणार्थी जर्मनी पहुंच चुके हैं। चांसलर एंगेला मर्केल की खुले दरवाजे वाली माइग्रेशन पॉलिसी पर हमले तेज हो चले हैं। बर्लिन में पिछले 55 सालों से रह रहे वरिष्ठ पत्रकार और लेखक आरिफ नकवी कहते हैं मर्केल निशाने पर हैं।
मर्केल तो इस बार निशाने के ऊपर हैं, क्योंकि मर्केल का रवैया जो था वो शरणार्थियों के लिए नर्म था। मर्केल का ये कहना था कि हम इनके आने के बाद भी अपनी समस्याओं को हल करेंगे, मतलब लेकिन जनता में यहाँ पे मुश्किलात हो रही हैं। देखिए आपको एक बात ये बताऊं कि बात चीजों का अंदाजा लोग नहीं कर पाते हैं। एक छोटे से गांव में अगर आप 200-300 शरणार्थी भेज देंगे जहाँ की जनसंख्या 500 है या 1000 है, तो जाहिर है कि वहाँ पे वो बहुत ज्यादा महसूस होगा लोगों को। इस किस्म की भी जो बातें हुई हैं, मतलब छोटे छोटे इलाकों में जो पहुंचे हैं शरणार्थी, उसका भी बहुत खराब असर पड़ा है।
20 दिसंबर 2016 को बर्लिन के एक व्यस्त क्रिसमस बाजार में एक ट्रक दौड़ा। इस घटना में कई लोग मारे गए, हमलावर शरणार्थी था। अब जर्मनी में दक्षिण पंथ भी पैर पसार रहा है। यहाँ की ऑल्टरनेटिव फॉर जर्मनी यानी AFD पार्टी 2013 में बनी और इसकी नीति है एंटी इस्लाम एंटी माइग्रेंट। तो देश में दक्षिण पंथ का रुझान कैसे बढ़ा? आरिफ नकवी।
जर्मनी के इतिहास पर गौर करें कि हमें सन 33 को नहीं भूलना चाहिए। ये वो समय था जब जर्मनी में इन्फ्लेशन बढ़ रहा था, जब जर्मनी में बेरोजगारी बढ़ी थी। उस वक्त यहाँ पर नाजी पार्टी जो थी हिटलर के नेतृत्व में, उसने यहूदियों के खिलाफ नारे देकर और ये वादे करके कि हम यहाँ से करप्शन दूर कर देंगे, हम यहाँ पे विकास भी करेंगे, ये सब चीज़ें वादे करके वो सत्ता में आई थी। इस समय भी अगर आप देखें तो AFDP विदेशियों के खिलाफ नारे लगाकर काफ़ी जनता का विश्वास यहाँ पे हासिल करने की कोशिश कर रही हैं। और उसकी वजह भी है क्योंकि लोग जो हैं वो असंतुष्ट हैं, तो उसका फायदा ये पार्टी उठाने की कोशिश कर रही है। और जब से इतने यहाँ पर शरणार्थी आए हैं सीरिया से, इराक से, अफगानिस्तान से, ये सब लोग जो आए हैं, तो उससे यहाँ पर माहौल काफी खराब हो गया है।
हाल के सर्वेक्षणों को देखा जाए तो मर्केल की लोकप्रियता में गिरावट आ रही है। ब्रिटेन के यूरोपीय संघ से अलग होने के फैसले के बाद जर्मनी को अपना रुतबा बचाने का संकट भी है। उसकी चुनौतियाँ न सिर्फ देश के भीतर की हैं, बल्कि विश्व स्तर पर खुद की साख बचाने की भी है। दुनिया जहान कार्यक्रम के बाद कार्यक्रम में अब वक्त है खेल समाचारों का।
नमस्कार, खेल समाचारों के साथ मैं हूं राखी शर्मा। टेस्ट की नंबर एक टीम भारत के सामने आज एक दिलचस्प चुनौती होगी। ये चुनौती है टेस्ट की नंबर 9 टीम बांग्लादेश। दोनों टीमें अब तक 8 बार टेस्ट में आमने सामने हुई हैं, लेकिन ये पहला मौका है जब भारत बांग्लादेश की मेजबानी करेगा। दोनों के बीच अब तक जो 8 मुकाबले खेले गए हैं उनमें से 6 में भारत को जीत मिली है और 2 ड्रॉ रहे हैं। जाहिर है हैदराबाद में आज होने वाले मुकाबले में भी भारत का ही पलड़ा भारी माना जा रहा है। बांग्लादेश के लिए ये ऐतिहासिक पल होगा क्योंकि 16 साल पहले टेस्ट दर्जा हासिल करने से लेकर अब वो पहली बार भारतीय सरजमी पर कोई टेस्ट खेलेगा। भारतीय टीम इस टेस्ट से अपनी लय बरकरार रखने की कोशिश करेगी, ऐसा उसके कप्तान विराट कोहली मान रहे हैं।
हम लोग दोनों एस्पेक्ट में अच्छा कर रहे हैं, इसीलिए हम नंबर 1 हैं अभी। और हम इतने टेस्ट मैचेस जीते हैं सिर्फ बैटिंग की वजह से नहीं, बॉलर्स ने 20 विकेट लिए हैं इसलिए हम जीते हैं, और बॉलर्स ने रन भी बनाए इसलिए हम जीते हैं। तो आई थिंक बॉलर्स का रोल जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहा है पिछले एक साल के अंदर, और हम वही माइंडसेट से खेलने जाते हैं कि बॉलर्स हमारे मेन प्लेयर्स हैं टेस्ट मैचेस में, और वही आपको मैच जिताएंगे। आप 800 रन भी बना सकते हैं लेकिन अगर 20 विकेट नहीं लेंगे तो मैच जीता नहीं जाता है।
और वहीं ब्लाइंड क्रिकेट वर्ल्ड T20 में कल भारत ने नेपाल को 152 रन के बड़े अंतर से हराया। पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत ने नेपाल के सामने जीत के लिए 290 रन का लक्ष्य रखा। इसमें रिटायर हर्ट बल्लेबाज अजय कुमार रेड्डी ने 109 और दुर्गा राव ने 53 रन का योगदान दिया। इसके अलावा वेंकटेश्वर राव ने नाबाद 82 रन की पारी खेली। जवाब में नेपाल की टीम 20 ओवरों में 137 रन ही बना सकी। ये भारतीय टीम का आखिरी लीग मैच था। इस जीत के साथ ही भारत की झोली में 9 मैचों में 8 जीत के बाद 24 अंक हो गए हैं। भारतीय टीम सेमीफाइनल में जगह बना चुकी है, लेकिन अंतिम 4 में उसका मुकाबला किससे होगा ये अभी साफ नहीं हुआ है। खेल समाचारों में फिलहाल इतना ही।
और अब इससे पहले के कार्यक्रम में हम आपसे विदा लें, मुख्य समाचार एक बार फिर से सुनते हैं।
तमिलनाडु के कार्यकारी राज्यपाल विद्यासागर राव ने चेन्नई में न होने की वजह से AIADMK पार्टी की नेता चुनी गई शशिकला अब तक मुख्यमंत्री पद की शपथ नहीं ले सकी हैं। अमेरिका के सदन ने अटॉर्नी जनरल पद के लिए राष्ट्रपति ट्रंप की पसंद अलवामा के विवादित सीनेटर जेफ सेशंस पर मोहर लगा दी है। ब्रिटेन की संसद के निचले सदन ने यूरोपीय संघ से अलग होने की प्रक्रिया को शुरू करने के सरकार को अनुमति देने के विधेयक को 2/3 बहुमत से पारित कर दिया है। अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट में खाली जगह भरने के लिए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से नामित जज ने ट्रंप के न्यायालय पर निशाना साधने को बेहद निराशाजनक और हतोत्साहित करने वाला बताया है। अमेरिका के रक्षा विभाग पेंटागन ने इसी महीने सीरिया में किए गए एक हवाई हमले में वरिष्ठ अलकायदा सदस्य अबू हानी अल मसरी की मौत की पुष्टि की है। बीबीसी समाचार।
तो बीबीसी हिंदी सेवा की पहली सभा नमस्कार भारत के इस अंक में बस इतना ही। स्टूडियो संभाल रहे थे शाकिर आलम। शाम 7:30 बजे दिनभर कार्यक्रम लेकर हम फिर से उपस्थित होंगे। मोहनलाल शर्मा को विदा दें, नमस्कार।